राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय दामोदर देश भक्तवृंद, सौभाग्य से हम श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के 33वें अध्याय में महाराज का श्रावण के महीने में श्रवण वर्णन कर रहे हैं। इस रास के विषय में आगे आप जैसे देखेंगे 17, 18, 19 श्लोकों तक पहुंचते पहुंचते कि एक मासूम बच्चा, एक सरल बालक अपनी छाया के साथ, छाया मतलब परछाई, जो शेडो है या प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का मतलब रिफ्लेक्शन, उसके साथ जैसे खेलता है, ऐसे जैसे इनोसेंट चाइल्ड अपने शेडो के साथ खेलता है, ऐसे श्री कृष्ण गोपियों के साथ खेल रहे थे। तो इसमें इनोसेंट चाइल्ड और शेडो से ये लगता है कि ये शुद्ध पवित्र भगवान और भगवान के अपने ही अंग से उत्पन्न शक्तियों के बीच में रस आस्वादन था और बहुत अच्छे सार इस अध्याय के अंत में आपको प्राप्त होगा। परंतु अब गोपियों की कला और गोपियों के मध्य में कृष्ण कैसे सुशोभित हो रहे हैं और कृष्ण के नाना रूपों के बीच में गोपियां कैसे सुशोभित हो रही है, दो उदाहरण कल हमने देखे। स्वर्ण मणियों के बीच में महामरकट नीलमणि श्री कृष्ण और बादलों के बीच में बिजली, बादल कृष्णा और चमकती हुई बिजली गोपियां, जो कभी अलग नहीं हो सकते। और गोपियों के कल हमने बहुत ही कलात्मक नृत्य का, पदन्यास का, हाथ और भ्रुवों और मुस्कान के द्वारा गीत के अनुकूल अनुभव का से अभिनय का श्रवण किया। आज गाने का श्रवण करेंगे, नृत्य फिर गान। तो आइए 8वें श्लोक का पाठ करते हैं। उचही जगौ नृत्य माना रक्त कंठयो रति प्रिया कृष्णा अभिमर्श मुदिता यद गीते नेदम आवृतम। उचही जगो, उच्च सुर में गाया, क्या बैठ के गाया, हारमोनियम लेके आ गई, नहीं, नृत्य माना, जब नृत्य कर रही थी नृत्य के साथ साथ उच्च सुर में गाना शुरू किया। तो गाना शुरू किया तो कंठ का फिर वर्णन कर रहे हैं, रक्त कंठयो। वैसे रक्त का दो भाव है, उनका कंठ, कंठ जैसे हम कंठी माला जहाँ पहनते हैं उसको कंठ कहते हैं, वैसे कंठ जहाँ से आवाज निकलता है उसको कंठ कहते हैं। और रक्त का अर्थ है बहुत रंगीन था, रंगारंगी था, इसका अर्थ है कि एक तो कोई बहुत सुंदर श्रृंगार के रंग लगाते हैं वो रंग लगाए थे, अथवा जो राग आलाप कर रहे थे उससे वो लाल लाल सा बहुत सुंदर एक एक बहुरंगी जैसा उनका कंठ लग रहा था। पर इतना मधुर प्रेम से कंठ से उच्च स्वर आलाप नृत्य कर रहे करती हुई कर रही थी, क्यों? रति प्रिया, रति हम जानते हैं भाव भक्ति प्रेम भक्ति उसको रति कहते हैं, और प्रिय रति प्रियः, प्रियः कृष्ण के प्रेम, उनका जो कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम था वो रति है, और उसका रसास्वादन करना चाहती थी। तो इसका अर्थ है कि जो गा रही थी वो कृष्ण की ही महिमा गा रही थी, जो उनका प्रीतम था उसके महिमा, उसका गुणगान, उसके प्रेम, जैसे प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, जो रसराज हैं, जो गोपीनाथ हैं, अखिल रस मूर्ति हैं, उनसे प्रेम करने वाली गोपियां रति प्रियाः, और गाते समय नृत्य करते समय कृष्ण अभी मर्श, जैसे ही कृष्ण का उनको स्पर्श होता था, हाथ का स्पर्श भी होता था, गाल से गाल भी मिलाएंगी आगे आएगा, तो उससे गोपियों को एक विशेष मुदिता, मुदिता का मतलब वो आनंद में विभोर हो जाती थी, मुदित हो जाती थी। मुदित आनंद का बहुत ऊपर का स्तर है, जहां सब कुछ भूल जाता है। प्रेमी के स्पर्श से मुदित हो जाती थी कृष्ण के, उन्हीं के लिए गा रही थी और मुदित हो रही थी, सब मुदित हो रही थी। यद गीत, जो गीत वो गा रही थी, इदम, ये पूरा ब्रह्मांड आवृतम, वो गीत पूरे ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गया, फैल गया, वो गीत दसों दिशाओं में सुनाई देने लगा। उनके गीत से और भगवान की महिमा गा रहे हैं, तो उस गीत का क्या प्रभाव रहा होगा। एक बार तानसेन अकबर को कहा, शहनशाह अकबर को, के आपने गाना कहां से सीखा है। बोला, हरिदास वृंदावन में हमारे गुरुदेव हैं, जिन्होंने बांके बिरहक बिहारी को प्रकट किया था। बोला, मैं उनका गाना सुनना चाहता हूं। तो कहते हैं, महाराज अकबर के साथ तानसेन वृंदावन में आए, जमुना के दूसरे तट पे, वो तो गोपी कृष्ण, गोपियों और कृष्ण के सुमरण में तलीन थे। अकबर ने कहा, इसको कहो गाओ, तो अपने गुरु को कैसे आदेश दे के गाओ और राजा को कैसे मना करे। तो बड़ी बुद्धि लगाकर तानसेन ने गाया, लेकिन सुर थोड़ा बिगाड़ दिया, उसमें गलती रख दी, त्रुटि कर दी। तो तानसेन समाधि से खुल के गाने लगा कि तुम ठीक नहीं गा रहे हो, ऐसे गाते हैं। और जैसे उन्होंने गाना शुरू किया, जमुना का बहना बंद हो गया, पक्षियों का चलाना बंद हो गया, हवा स्थिर हो गई और वातावरण इतना दिव्य हो गया कि शहंशाह अकबर आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, तानसेन तुमसे तो ये बहुत अच्छा गाता है। तानसेन ने कहा, महाराज मैं तो शहंशाह हिंद के लिए गा रहा हूँ, मैं तो हिंदुस्तान के महाराज के लिए गा रहा हूँ, और ये जगत के नाथ के लिए गा रहा है, क्या तुलना होगी। जो भगवान का गीत गाएगा वो तो पूरे विश्व को आनंदित कर देगा, तो यहाँ गोपियाँ कृष्ण के प्रेम का गीत गा रही हैं, तो क्यों ना पूरा विश्व उस गीत के आनंद से आज भी रस ले रहा है, ऐसा आगे आएगा। तो गोपियाँ स्वभाव से ही भगवान से प्रेम करने वाली थी, ये है रति प्रेम, रति प्रिया इसका अर्थ है। यही उन सबों का जीवन है, उन सबों का गला अनेक रागों से अनुरंजित था, अनेक रागों से, रंग या राग दोनों का अर्थ एक ही है। भगवान श्री कृष्ण का संसर्ग स्पर्श प्राप्त होने के कारण वे सब अत्यंत प्रसन्न हैं। वे सब नृत्य करती हुई जोर जोर से गाने लगी। उन सबों के गीत से ये संपूर्ण जगत अब भी गूंज रहा है। ये श्रीधर स्वामी ने इसका अनुवाद किया है, ये सारा जगत आज भी गूंज रहा है। ये आगे वाले श्लोक में इसका भाव आएगा। नृत्य माना का अर्थात है नृत्य करती हुई। रक्त कंठया का अर्थ है उन सबों का कंठ, गला अनेक राग रागनियों से अनुरंजित था, राग रागनियों से अनुरंजित था। कृष्ण अभी मर्षेन मुदिता अर्थात भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करके, संस्पर्श प्राप्त करके, सम्यक स्पर्श अच्छी तरह से आलिंगन आदि प्राप्त होने के कारण अत्यंत प्रसन्न। इदम अर्थात संपूर्ण जगत, ये इन शब्दों का भाव दिया हुआ है। अब हम श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों के भाव को देखते हैं। बड़ी उत्सुक थी कृष्ण के साथ माधुर्य प्रेम का रस आस्वादन करने के लिए। ये है रति प्रिया की परिभाषा। उनके कंठ रंग से, कुछ धातुओं के रंग से रंगित थे या राग रागियों से अनुरंजित थे या बाहर से कुछ सुंदर धातुओं से रंगित थे, ऐसे लिखा है। और गोपियां जोर जोर से नृत्य करती हुई गाने लगी। कृष्ण के स्पर्श से बड़ी मुदित हुई और जो गा रही थी उस गान से पूरा ब्रह्मांड ध्वनित हो रहा था। प्रभुपाद जी शीर्ष लिखते हैं, वो नीचे जीव गोस्वामी ने लिखा ही है। ये जो प्रमाणिक संगीत शास्त्र है, संगीत सार, उसमें लिखा है तावंत एव रागाः सूर्यावतयो जीव जातयः तेषु षोडश सहस्री पुरा गोपी कृता वरा। बहुत से राग हैं, राग कितने, जितनी जूनियां हैं उतने राग हैं। इसका मतलब है जो पक्षी है जैसी उनका गले से आवाज निकलता है वो भी एक राग है। तो जितनी जूनियां हैं उतने राग हैं, परंतु उन रागों में 16,000 मुख्य राग हैं जो गोपियों के द्वारा गाए गए। इसलिए गोपियों ने 16,000 राग रागनियों का गान किया। और अब ये रागनियां और राग पूरे विश्व में गाए जाते हैं, इसका मतलब आज भी गाए जा रहे हैं। यद गीते ने दमावृतम का अर्थ है आज भी भक्त इन्हीं रागों से कृष्ण की प्रसन्नता के गीत गाते हैं और गोपियों के चरण चिन्हों का गमन करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, गोपियां नृत्य कर रही थी और नृत्य करते जा रही थी और भगवान श्री कृष्ण उनका बहुत बड़ा आदर कर रहे थे, उनकी महिमा गा रहे थे, क्योंकि उनका नृत्य भगवान को बहुत प्रिय था। और फिर वो गाना शुरू किया और गा रही थी और उनके कंठ बहुत से राग रागनियों से अनुरंजित हो गई। जो राग हैं उनको संगीत सार में, ये शब्द है संगीत सार, रागों को संगीत सार में कहा गया है। जैसे हम पढ़ के आए, जितने जूनियां, जितने जीवों की जूनियां उतने राग, परंतु उनमें 16,000 मुख्य हैं और जो जो गोपियों ने गाए वही उनमें से सबसे मुख्य है। गोपियां कृष्ण में अति आसक्त थी, रति प्रिया थी, रति प्रिया, और कृष्ण के संग सप्र से मुदित थी। उसका लाभ क्या हुआ? उसका लाभ ये हुआ कि उनके नृत्य से उनके शरीर में थकावट नहीं हुई, उनके उनके गाल से उनका गला नहीं थका। जब कोई कार्य प्रेमवश किया जाता है ना, तो थकने का नाम ही नहीं आता है, थकना होता ही नहीं। थकना तो जब मजबूरी में कोई काम होता है तब कर होता है। तो ये क्योंकि प्रेम पूर्वक गा रही थी और नृत्य कर रही थी और कृष्ण के लिए कर रही थी और कृष्ण उनके मध्य में था, इसलिए उनको उनके गान और नृत्य से कोई थकावट नहीं हुई। पूरा विश्व उस राग से भर गया। एक दूसरा अर्थ है, आज जो भी विश्व में गाया जाता है वो सब गोपियों के द्वारा ही प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ है। श्री जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, गोपियों के प्रमुख नृत्य का वर्णन 7वें श्लोक में किया, और क्योंकि गोपियां मुदित थी, आनंदित थी, प्रफुल्लित थी, अब उनके गान का यहां वर्णन किया जा रहा है। और नृत्य करते करते गा रही थी और अभिनय भी कर रही थी गाने का। इसका अर्थ है कि वो बहुत कला संपन्न थी, नृत्य और गान साथ में कर सकती थी। प्रायः आप देखेंगे गाने वाले अलग बैठे होते हैं और नृत्य करने वाले केवल होंठ हिलाते हैं, गाना कोई और गाता है, प्लेबैक सिंगर कहते हैं जिसको, लेकिन गोपियां ये दोनों कार्य साथ कर रही थी। ये गोपियों की कला और कला की महानता है। पर क्यों गा रही थी, क्यों नृत्य कर रही थी, क्या लाभ था? रति प्रिया, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। कभी कभी कहते हैं नृत्य करना है, कोई बच्ची कहे, लड़की कहे, माता कहे, तो कहे हाँ करो, कृष्ण के सामने करो, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करो, पब्लिक के लिए करने की जरूरत नहीं। कृष्ण प्रसन्न हो जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और आप एक भक्ति रसामृत सिंधु में चंद्रकला का नाम सुनते हैं, जो पूरी रात भगवान के मंदिर में नृत्य कर रही थी गोपियों के भाव से, और वो भाव भक्ति का उदाहरण है। और ये रात को गोपियां केवल कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी, कोई पब्लिक इस डांस को नहीं देख रहा था। ये संसार के मनोरंजन के लिए नृत्य नहीं हो रहा है, ये परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। तो श्री अखिल चेष्टा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही तो करनी चाहिए। हमारी सारी चेष्टाओं का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता। तो गोपियां यही तो कर रही हैं, इसलिए वो सबसे महान भक्तों की श्रेणी में आती। भक्तों का जहां नाम गिना जाएगा तो सबसे उत्तम श्रेणी की गोपियां हैं, क्योंकि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की प्रशंसा था। हम अपनी श्रृंगार करके शीशे में देखते हैं कैसे लगते हैं, उनके लिए शीशा ही कृष्ण था। वो प्रसन्न हो गया तो हम अच्छे हैं, अच्छे हैं, उनको प्रसन्न नहीं है तो हमारा सब कुछ सब बेकार है। तो ये इतना क्यों गा रही थी, इतनी बड़ी कलात्मक ढंग से नृत्य क्यों कर रही थी, मधुर राग नागनियों से सुर क्यों आलाप रही थी? अपने प्रीतम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। अब जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, आप चिंता नहीं करना कि गोपियां अबला स्त्रियां हैं, कहीं नृत्य करते करते थक न जाएं, रात लंबी है और ब्रह्मा जी की रात हो जाएगी, ये चिंता मत करना। बोला क्यों? क्योंकि कृष्ण जैसे उनको स्पर्श करते थे उनके अंदर तो और स्फूर्ति आ जाती थी और उनके अंदर प्रेम का एक एक बाढ़ आ जाती थी, तो थकने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। कामी पुरुष थक जाता है, ये तो प्रेमी है, कामी नहीं है। प्रेम में आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, यहां तो अमृत का आस्वादन हो रहा है, ये तो क्षण क्षण में बढ़ने वाला है, इसमें थकन नहीं होने वाली है। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में गए और 75 साल में कीर्तन करते थे भक्तों के संग में। नौजवान प्रभुपाद जी के शिष्य कहते हैं प्रभुपाद जी चार चार पांच पांच प्रोग्राम में प्रवचन करने जाते थे, हम तो दो के साथ दो एक दो के बाद थक जाते थे, वो नहीं थकते थे, क्योंकि कृष्ण प्रेम के लिए काम कर रहे थे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सेवा कर रहे थे, फिर थकेंगे कैसे। कभी भी ऐसा उदाहरण हुआ है कि प्रभुपाद ने कहा मैं थका हुआ हूं ये काम नहीं करूंगा, आपको मिलेगा ही नहीं, स्वस्थ ठीक नहीं था। इंग्लैंड की रथ यात्रा में बुलाया गया, हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट से ले जाया गया, पता नहीं बैठेंगे रथ में नहीं, रथ से उतर के नृत्य करने लगे। अब इतने लोग इकट्ठे हो गए, सिक्योरिटी उनको कह रही है तो हमारी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा, हटाओ, लेकिन प्रभुपाद नृत्य कर रहे थे। प्रेम से आपने घरों में देखा है जब शादी होती है लड़की की या लड़के की, माँ दो दो दिन तक न खाती है न सोती है फिर भी स्फूर्ति के साथ काम करती रहती, ये संसार की दृष्टि की बात कर रहा हूं। तो कृष्ण प्रेम में जो परिपूर्ण हो और प्रफुल्लित हो उसको कौन से शरीर के कार्य से थकावट होगी, नहीं हो सकती है, ये बात कही जा रही है। कृष्ण ने स्पर्श किया तो वो एकदम फिर प्रफुल्लित हो गई। भीष्म पितामह के शरीर में एक एक सेंटीमीटर के ऊपर एक अर्जुन का तीखा हुआ बाण चुभा हुआ था, जो आर पार शरीर से निकला हुआ था, कितनी पीड़ा हुई होगी। लिखा है श्री कृष्ण ने दृष्टि डाली, अमृत दृष्टि डाली, अब स्पर्श नहीं किया केवल दृष्टि डाली, भीष्म का सारा पीड़ा समाप्त हो गई, थकावट खत्म हो गई और प्रवचन करने लगे। पहला महात्मा सोए हुए प्रवचन कर रहा है और भगवान के तीन तीन अवतार उस प्रवचन को सुन रहे हैं। श्री कृष्ण साक्षात परम पुरुष भगवान अवतारी स्वयं भगवान सुन रहे हैं, परशुराम शिष्यों के साथ सुन रहे हैं और सारे ब्रह्मांड के ऋषि सुन रहे हैं और सोया हुआ प्रवचन कर रहे। कृष्ण की दृष्टि से शक्ति आई है, कृष्ण ने 7 दिन गोवर्धन पर्वत को धारण किया, कहां से शक्ति आई। बोला सामने सांडले ऋषि ने कहा था राधा रानी को अष्ट सखियों के साथ विराजमान करके बिठा दो, कृष्ण की दृष्टि राधा के ऊपर पड़ी रहेगी और राधा की दृष्टि कृष्ण के ऊपर पड़ी रही तो ये शक्ति और शक्तिमान की शक्ति से ये ब्रह्मांड का संचालन, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन चल रहा है, तो ये गोवर्धन उठाना कौन सी बड़ी बात है। सो ये इसलिए इसको कभी भी भौतिक स्तर पे समझने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। क्यों नृत्य कर रही थी? यही एकमात्र कारण था कि कृष्ण को प्रसन्न करना है और उनका मधुर सुर के जो सुर आलाप रही थी वो पूरे ब्रह्मांड को भेदन कर रहा था। ऐसे हमारी भक्ति की लता, जो भक्ति साधन की साधन भक्ति की लता जो गुरु देता है, वो लता इस संसार पूरे को भेदन करती हुई, ब्रह्मांड के 7 पर्दों को भेदन करती हुई, कारण सागर से आगे का ब्रह्म ज्योति को भेदन करती हुई, वैकुंठों से आगे गोलोक में कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाती है। और ये तो भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप गोपियां हैं, इनके राग अगर ब्रह्मांड को भेदन करे तो कौन सी बड़ी बात है। अथवा पूरा विश्व अपने आप इन रागों से रंजित हो गया, पूरा पूरा विश्व गाने के लिए प्रेरित हो गया, और जो वही बात कही है कि संगीत सार शास्त्र में 16,000 गोपियों के गाए हुए रागों का वर्णन है, और आगे लिखा है जो गोपियों ने गाए वही मुख्य हैं। एक नृत्य माणा का भाव है गोपियों के नृत्य का, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अनुमोदन किया, आदर किया, भगवान उनके गोपियों की गोपियों के नृत्य की सराहना करने लगे। तो उनके कंठ किससे रंजित थे? बोला प्रेम से है, रक्त कंठ, या एक रक्त का अर्थ है प्रेम, अनुरक्त जैसे कोई होता है, तो इसका मतलब जो गा रही थी वो प्रेम से गा रही थी। मां जब अपने बच्चे से प्रेम करती है तो कितना कंठ से मीठा आवाज निकलता है, और ये प्रियाएं कृष्ण, प्रियाएं कृष्ण के लिए गा रही थी तो कितना मधुर स्वर निकल रहा था, उसके एक उसका एक अर्थ है रक्त कंठय। तो अभी हमारे को तीन अर्थ रक्त कंठय के मिले, बाहर से कंठ के ऊपर सुंदर चित्रण किया हुआ हो, एक ये बाहर का अर्थ, राग रागनियों से गला रंजित हो, इसका मतलब नाना प्रकार के राग, बहु प्रकार के राग उनके गले से निकल रहे थे, और तीसरा प्रेम से जो स्वर निकल रहा था उसमें विशेष प्रेम था, तो मिठास प्रेम की स्वर में थी, गान की नहीं प्रेम की थी, रक्त कंठय। और इसी को लिखते हैं जीव गोस्वामी का पार कि ये उनके मधुर गान का सूचक है, गान में जो मधुरता थी उसका सूचक है। और उच्च स्वर में क्यों गा रही थी? ये कृष्ण से जो प्रेम था, रति प्रिया थी, कृष्ण का एक दूसरा नाम रति है, लिखा है कृष्ण का एक दूसरा नाम रति है, क्योंकि प्रेम तो एक कृष्ण से होता है और रति का अर्थ है प्रेम, तो एकमात्र प्रेम का पात्र कृष्ण है संसार में, यही तो प्रेम की परिभाषा है, टू रिपोज लव मीन्स टू डू रिपोज एवरीथिंग इन वन पर्सन, हमारे हृदय में प्रेम भर के किसने भेजा है? कृष्ण ने। तो हम सबका प्रेम किसके लिए होना चाहिए? कृष्ण के लिए, गोपियां उसका उदाहरण स्थापित कर रही, तो कृष्ण का एक नाम है रति, तो रति की एक परिभाषा जीव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गा रही थी। बोला क्यों जोर से गा रहे? बोला कृष्ण भी जोर से गा रहे थे, क्योंकि आगे वाले श्लोक में हम पढ़ेंगे कि कृष्ण के राग के साथ राग मिलाती हुई विशाखा ने गाया तो कृष्ण से भी ऊपर के तान में चली गई, और फिर ललिता ने उसी राग को दूसरे, उसी गीत को दूसरे राग में गाया, तो ये अब पराशर जी ने राग के विषय में लिखा है रास गेयम जगो कृष्ण, इसका मतलब कृष्ण रास में गा रहे थे, यावत व्यायत ध्वनि ही, और उसकी ध्वनि बहुत दूर दूर जा रही थी ऐसे समझना चाहिए, परंतु गोपियां जब जा गा रही थी साधो कृष्ण एति कृष्ण एति तावद तव द्विगुणा जगो, कृष्ण का स्वर जा रहा था जहां तक वहा उससे दो गुना दूर तक गोपियों का गान आलाप उससे डबल था। जब रास विहार में कृष्ण ने गाया गोपियों ने उससे दुगुना ज्यादा आलाप से स्वर से गाया, और कहा वाह वाह कृष्ण आपका स्वर, लेकिन उनका स्वर उनसे ज्यादा दो बार ज्यादा था। उनके जोर से गाने के तीन कारण लिखे हैं जीव गोस्वामी ने, क्योंकि एक तो उनके कंठ से निकलने वाले जो राग थे वो मधुर थे, तो मधुर राग जोर से गाने में और आनंद आता है, और दूसरा कृष्ण प्रेमी थी, कृष्ण में प्रेम और स्नेह था, जिस प्रेमी के लिए गा रही थी वो सामने खड़ा था, तो जितनी कला और जितनी उनमें सामर्थ्य और शक्ति थी वो पूरी लगा रही थी, और तीसरा कृष्ण के संस्पर्श से मुदित थी, इसलिए उनका गाना भी आह्लाद वाला था। ये तीन कारण जीव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं। वैसे भी हम उदाहरण कहते हैं कि कृष्ण भक्ति का एक मुख्य उद्देश्य है कि जो हम में सामर्थ्य है, जो हमारे में प्रतिभा है, जो हमारे में टैलेंट है, उसको कृष्ण भावना भावित होके 100% प्रदर्शित करना चाहिए। जैसे अर्जुन के द्वारा श्री कृष्ण ने युद्ध में उसकी क्षत्रिय की कला का पूर्ण रूप से प्रदर्शन कराया, और यह रास में गोपियों के द्वारा नृत्य और गान का पूर्ण प्रदर्शन कराया, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम कृष्ण भावना में है, जो भी हमारे अंदर गुण है, कला है, उसमें हमको प्रवीण होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, और हम पूरा उसके अंदर अपना पूरी उसी कला से कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तो गोपियां जोर से गाने के तीन कारण हैं, मधुर स्वर था, कृष्ण वो शब्द था प्रिया थी, और तीसरा कृष्ण स्पर्श मुदिता थी। तीन कारण हैं, और भी बहुत से कारण इसके साथ हैं जो बहुत गोपनीय है, इसलिए उनका वर्णन नहीं किया है। जैसे गोपियों के मध्य में कृष्ण सुशोभित हुए, ऐसे कृष्ण के उपस्थिति में गोपियां भी अपने सारे गुणों को प्रकाशित करने लगी, परस्पर एक दूसरे का प्रेम बढ़ाने के लिए ये प्रेम की बाढ़ आ गई। ये आगे के श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। आइए नवे श्लोक का पाठ करते हैं। काचिद समम मुकंदेन स्वर जाति अमिश्रता अमिश्रता, काचिद समम मुकंदेन स्वर जाति अमिश्रता। उन्हीं पूजिता तेना प्रियता साधु साधुति तदेव ध्रुव मोनाम्नीये तस्यै मानं च भवादात। केचिद, किसी एक ने, ये कौन है? ये है विशाखा। आगे बताया चक्रवर्ती पाद ने कहा विशाखा गोपी ने, क्योंकि इसमें है दो, विशाखा का और ललिता का वर्णन, और आने वाले श्लोक में है राजा रानी का वर्णन। तो केचित मतलब किसी एक ने, विशाखा ने, गोपी, गोपी ने, समम का मतलब कृष्ण के साथ में, मुकंद ने का, मुकंद का एक अर्थ हमको आता है कृष्ण का नाम है जो मुक्ति देता है, तो किसी को मुक्ति मिलेगी तो क्या होगा? दुखनाश होगा, दुखनाश होगा तो क्या होगा? सुख मिलेगा। तो यहां मुके मुकंद का अर्थ है आह्लाद देने वाले, मुक्ति अर्थ नहीं है, आह्लाद देने वाले कृष्ण, आनंद बढ़ाने वाले कृष्ण, आनंद बढ़ाने वाले कृष्ण के साथ विशाखा ने स्वर जाति ही, जिस स्वर में कृष्ण गा रहे थे उसी स्वर में उसी जाति में गाया, परंतु अमिश्रिता, कृष्ण के गान के साथ मिला नहीं, मिला मिक्स नहीं हुआ। इसके दो अर्थ आ जाएंगे, एक तो जो स्वर था उसमें कोई शुद्ध स्वर था, और दूसरा कृष्ण के स्वर से ये जो नारी का जैसे बहुत तीखा स्वर बहुत ऊपर चला गया कृष्ण के स्वर से। गान एक ही कर रहे थे परंतु स्वर का जो ऊपर का पंचमन तक इतना ऊपर चला गया, इतना ऊपर चला गया और कृष्ण के स्वर के साथ मिला नहीं, अलग ही रहा। और फिर लिखा है कृष्णा के स्वर के साथ नहीं मिला। उन नीय और तान को बढ़ा दिया, और जब उसके तान कृष्ण के तान से ऊपर हुआ तो पूजिता, कृष्ण ने उसको उसकी पूजा की, मानो उसके उस स्वर की सराहना की। तेना कृष्ण के द्वारा प्रियता, कृष्ण प्रसन्न हो गए विशाखा से, कहा साधु साधु इति, वाह 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 वाह, जय हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उसी समय जब कृष्ण विशाखा की तान जो कृष्ण के तान से और ऊपर चला गया और कृष्ण उससे मुदित होकर उनकी सराहना करने लगी, उसी समय और उसी स्वर में से तत एव, उसी स्वर में धौरवम, एक राग वही और गीत वही, सारी गीत वही, मानो कहा है कि प्रीतम कृष्ण कहना है, तो एक ने प्रीतम कृष्ण एक स्वर में गाया विशाखा ने, उसी शब्द कृष्ण प्रीतम को समझ लो। जब दूसरी गोपी गाने लगी उनीनिया, जब दूसरी गोपी ने गाया, ये ललिता ने गाया, तो तान और सुर ही बदल दिया, एक दूसरे स्वर में गाया, शब्द वही थे गीत के, सुर और था, तसाई, और भगवान श्री कृष्ण ने उसको मानम, उसको भी अति मान दिया, वाह वाह, एक को उपहार दिया, अपना हार दिया, दूसरे को कंठमाला दी, क्या दिया आगे हम पढ़ेंगे। च बहु वदात, उसको भी अति मान दिया। तो अब जिसको प्रसन्न करने के लिए गोपियां गा रही थी, उस श्री कृष्ण ने उन गोपियों के गान की सराहना की। कोई गोपी भगवान कृष्ण के साथ स्वर में स्वर मिलाकर गा रही थी, वो भगवान श्री कृष्ण की अपेक्षा और अधिक ऊंचे स्वर से गाने लगी। उस गोपी के विलक्षण और उत्तम स्वर को सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा कहकर उसकी प्रशंसा की। उसी राग को एक गोपी ने ध्रुव पद में गाया, ये एक और पद है गाने का, जो राग जानते हैं उनको मालूम होगा, मुझे तो मालूम नहीं है। ध्रुव पद में गाया तो भगवान ने उसका भी बहुत अधिक समादर किया। ये इस श्लोक का अनुवाद है श्रीधर स्वामी के भाषा में। भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने स्वर आलाप को मिलाए बिना और जोर से गाई, प्रसन्न भगवान के द्वारा सम्मानित की गई। इस गोपी के ही द्वारा जोर से गाए गए राग को ही ध्रुव नामक ताल विशेष से और जोर से गाई दूसरी गोपी ने। सो मुकंद के साथ के सुर में स्वर मिलाया एक गोपी ने, और उनका राग पवित्र था, पवित्र सुर में था, क्योंकि अनीति हम पढ़ेंगे सुर दो प्रकार के हैं, पवित्र और अपवित्र। और कृष्ण के स्वर से उसका तान ऊपर चला गया। कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और उसकी सराहना करते हुए कहा वाह 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 वाह। और एक गोपी और ने उसी स्वर को इस पे विशेष जो है ताल में गाया और कृष्ण ने उसकी भी सराहना की। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं इस श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद के शिष्यों का नहीं है क्या? नहीं है लगता है। तो स्वर कहां से जन्म लेते हैं? बोला श्रुति से। और सात स्वर हैं और ये सात स्वर एक मयूर के स्वर के अनुरूप होता है, एक चातक का स्वर है, एक तो बकरी का लिखा हुआ है, एक क्रेन कुकू, एक तो कोयल का है स्ट्रोक, और एक एलिफेंट। ये नाम लिखे हैं कि ये स्वर यहां से आते हैं। जातियां जो है 18 जातियां हैं, ये स्वरों की जातियां जो है, जैसे ये सुर कैसे गाए जाते हैं उसकी 18 जातियां हैं। और जातियां राग का कारण है और ये जातियां दो प्रकार की होती हैं, शुद्ध और अशुद्ध। जो शुद्ध जातियां हैं उनके नाम लिखे हैं। मैं देखा ना, शायद प्रभुपाद के शिष्य ने लिखा तो था, इसका कहां है नहीं। मेरा यही शब्द है, सजड़ा ऋषभ, ये शब्द नीचे और संस्कृत में अच्छे आएंगे, गंधर्व, मध्यमा, पंचमा, दैवता और निषाद जाति, ये पवित्र है। और कुछ जातियां हैं जिसको विकृत कही गई है। सभी गा रही थी, भले सभी गा रही थी, अब चक्रवर्ती पाद कह रहे ऐसा नहीं है जब कृष्ण ने गाया उसी समय गोपी ने गाया, ऐसा नहीं है। अब मिश्रित का मतलब कृष्ण ने राग आलापा फिर गोपी ने आलापा। दूसरा अर्थ है अमिश्रित का, गोपियों ने शुद्ध जाति में गाया, राग की जो जातियां हैं सात, वो 18 जातियां, कितनी सात स्वर हैं और जातियां कितनी हमने देखी, 18 स्वर। हाँ, जातियां 18 हैं, स्वर सात हैं। तो गोपी ने शुद्ध जाति से गाया, उस जाति को विकृत जाति से नहीं गाया। इसका दूसरा अमिश्रित का अर्थ यह है। तो इसका अर्थ हुआ कि कृष्ण के स्वर के सात स्वर मिला के गाया, परंतु जो जाति थी वो शुद्ध थी, विकृत नहीं थी। और दूसरा अर्थ है कृष्ण ने पहले गाया, जैसे कभी कभी हम कहते हैं एक पक्ष हरे कृष्ण मंत्र कहे, एक हरे राम कहे, फिर दोनों में से किसका ऊंचा स्वर है, ऐसे जब हम कभी कभी प्रचार में करते हैं, तो पहले कृष्ण ने गाया फिर विशाखा ने गाया, ऐसे भी इसका दूसरा अर्थ हो सकता है अमिश्रित का। क्योंकि अति सुंदर गायक थी गोपी, तो उसने तो पवित्र ही जाति में और स्वर में गाया। तो एक विशेष प्रकार से एक गोपी ने आलाप किया, आलाप आलाप जैसे गाने से पहले जो ऐसे करते हैं ये आलाप कहलाता है। तो ऐसे आलाप जिस गोपी ने किया तो उसकी कला को देख के कृष्ण ने उसको बहुत उसकी प्रशंसा की, उसको अपना जो ओतरी थी पीताम्बरी उसको दे दी और कुछ और आभूषण आदि उसको उपहार दिए। वाह वाह, इतना सुंदर गाया है, लो ये उपहार दिया। समझना चाहिए कि ये गोपी विशाखा थी, ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं। और आलाप जो उस गोपी ने किया एक गीत को ध्रुव ताल में गाया गया और बहुत कला से गाया गया, और जिसने ध्रुव ताल में गाया उसको कृष्ण ने आभूषण दिए, अंगूठी दी, अपनी माला दी, क्योंकि उसने बहुत और कलात्मक में गाया और वो थी ललिता, और कौन हो सकता है। और अब यहाँ चक्रवर्ती पाद लिखा है कि देखा जब गोपियों ने, जब राधा रानी ने देखा कि अब इन दोनों के सुंदर गान के बाद तो कोई और गाना में हिचकिचा रही थी कि ये तो महान गायिका है, इनके गाने के बाद अब हमारे गाने का क्या महत्व रहेगा, तो उस समय राधा रानी स्वयं ने गाना शुरू किया। इससे हमें पता लगता है कि सबसे मधुर स्वर और कलात्मक गान श्री राधिका जी का है। श्री राजीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, अब इस श्लोक में गोपियों के जो प्रेम के कार्य और कलाएं हैं इसको अनुभव कहते हैं। ये जो अनुभव है, अनुभव का मतलब कृष्ण ने कुछ किया, उससे उनके प्रेम में एक उछाल आया, उसके कारण उसने जो कार्य किया, रस को बढ़ाने के लिए अनुभव जरूरी है और अनुभव वॉलंटरी होता है, अपनी इच्छा से किया। अब विभाव तो मधुर्य प्रेम की, तो ये गोपियां स्वयं मूर्तिमान स्वरूप है, और विभाव हुआ कृष्ण का बांसुरी बजाते हुए उनके मध्य में खड़ा होना, ये स्टिमुलेशन हुआ, और अब नृत्य कर रहे हैं ये अनुभव है, गा रही है ये अनुभव है, और अब और चेष्टाएं कर रही है कलात्मक, उसको कहते हैं अनुभव। और फिर जो इनको प्रफुल्लित होके बालों के गिर जाएंगे फूल और पट्टे ढीले हो जाएंगे, इसको कहते हैं जो है अपना इमोशन, संचारी भाव, ये संचारी भाव हो जाएंगे, ये ना, ये है अष्ट सात्विक भाव, इनवॉलंटरी भाव है। और फिर जैसे हमने पहले देखा संचारी भाव, उनसे बातें जो करती हैं वो एक अलग प्रकार की बातें करती हैं, कभी वो ये सब भाव इकट्ठे होते हैं तब रस बनता है। तो अब गोपियों के प्रेम के अन्य अनुभवों का वर्णन किया जा रहा है, और विशेष गोपियों के अनुभव का ही वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि गोपियों की संख्या तो असंख्य है और अलग अलग वर्ग की गोपियां हैं। चंद्रावली का पक्ष अलग है, राधा रानी का पक्ष अलग है, मध्य इष्ट गोपियों का पक्ष अलग है, राधा के सहयोगी गोपियां हैं, चंद्रावली की सहयोगी गोपियां हैं, ऐसे बहुत से गोपियों के अपने अपने दल हैं, और गोपियां नित्य सिद्ध गोपियां हैं, कुछ वेद की ऋचाएं गोपियां बनी हैं, तो बहुत सारे गोपियों के वर्ग हैं। अब लिखा है ये 5.5 श्लोकों में गोपियों के इन कलात्मक अनुभवों का वर्णन किया जाएगा। आने वाले इस श्लोक से लेकर 5.5 श्लोकों में गोपियों के वर्णन किया जाएगा। एक गोपी ने कृष्ण मुकंद समम, कृष्ण के पीछे बहुत उन्नीय अति सुंदर राग आलापा, सह का अर्थ है सह या समम का मतलब सहया सहायक, जैसे असिस्टेंट बोलते हैं, सहायक सहायक के रूप में, ऐसे नहीं मुख्य तो कृष्ण ही है, सहायक के रूप में, वो सहायक के रूप में कृष्ण, जैसे हमने देखा एक मेन गाने वाला होता है, दूसरा उसके पीछे सुर आलापता है, एक पहले गाता है वो मुख्य गाने वाला, दूसरा उसका सहायक होता है, तो विशाखा ने सहायक के रूप में गाना शुरू किया। परंतु उसने जो आलाप किया वो तो अमिश्रित था, वो कृष्ण के आलाप से बिल्कुल अलग सा था, और वो इतना मधुर था और इतना दुगना ज्यादा उच्च स्वर में था और मधुर स्वर में था और आकर्षित था, इसलिए कृष्ण ने कहा वाह 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 साधु साधु जय हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और ऐसे उसका कृष्ण ने बड़ा आदर किया और उसकी सराहना की। एक गोपी ने राग गाया, गीत गाया, या तो ये जो गाया बिना ताल के था, क्योंकि राग के स्वभाव को प्रकाशित करना था, अथवा आदि ताल 8-4-4 से गाया जो आरंभ में गाया जाता है। तो ये जो ताल दूसरी गोपी ने गाया वो ललिता है, वो था ध्रुवत ताल। जैसे हमारे पास नरोत्तम दास का कीर्तन है स्पेशल, जो महाशय साई कीर्तन, ऐसे अलग अलग ताल के कीर्तन होते हैं, तो ये एक और विशेष ताल से गाया, ध्रुव ताल से गाया, अथवा यति या नेहासार ताल दो भागों में गाया जिसको भोग कहते हैं, और कृष्ण ने उसका भी अति आदर किया। और नहीं तो स्वरा का अर्थ है सात स्वर, और जो स्वर होते हैं वो पशुओं के आलाप से कंपेयर किए जाते हैं, तुलना दी जाती है। तो अब यहां स्वरों का नाम लिखा हुआ है, अब हम तो गाने वाले हैं नहीं, आप में से जो प्रेम से गाते हैं इनको सुन लीजिए। रंजका श्रोत्र चित्ता नाम स्वरा सप्त विधा मता षड्ज ऋषभौच गांधारो मध्यम पंचमं तथा देवताश्च निषाढ़श्च सर्वे स्युः श्रुति संभवा मयूर चातक छाग करुंच कोकिल दरदोरा मातंगश्च क्रमेणाओ स्वरा नेताम सुदुर्गमा। जो सुनने वालों को बहुत सुंदर लगते हैं वो सात प्रकार के स्वर हैं, षड्ज ऋषभ गांधर्व मध्यम पंचम दैवत निषाद, और इन सब की उत्पत्ति श्रुति से हुई है, और उनका वो समान है, उनकी समानता है मयूर के, जो मयूर कू कू करता है उसके साथ, एक मयूर एक चातक, और ये गोट लिखा है, करलियू लिखा है, कुकू लिखा है, फ्राग लिखा है, एलिफेंट लिखा है। अब कोकिल तो लग रहा है, दुर्दाहा करुंच करुंच, और जातियां जो है इसकी जिससे राग निकलते हैं उसके लिए लिखा है रागस्तु जायते यस्याः सा जाति अभिधीयते शुद्ध व विकृत चेति सा द्विधा परिकीर्तिता। जातियों से सुर निकलता है वो दो प्रकार की होती है, एक शुद्ध और एक विकृत। शुद्धा सप्तविधा अग्नेय तजग्नेय सारिजः भेदतः षड्जः कैशिक्यादि भेदाद एकादशी विधा परा। जो राग से उत्पन्न होते हैं उसको जाति कहते हैं, वो दो प्रकार की होती है, शुद्ध और अशुद्ध, और विकृत और शुद्ध। और जो शुद्ध जातियां हैं वो सात प्रकार की है, और जैसे सात स्वरों के अनुसार होती हैं, और 11 प्रकार की अलग हो जाती हैं जो उनके सहायक होती हैं। तो ये जो भाव है, ये 18 जातियां जो ऊपर गई गई है उसको 11 और 7 करके यहां अलग लिखा हुआ है। सारी जाति का अर्थ है 7 मुख्य जातियां, सारे ऋषभादि। सड़ज कई शिक्यादि का मतलब है 11 और सेमी टोन्स, उसका मतलब उसके सहयोगी राग। अमिश्रता का मतलब है ऐसे जिसके जिसमें केवल स्वर और जाति होता है और कुछ मिलावट नहीं की जाती है। ये केवल बहुत कलाकार संगीतकार ही जान सकता है, और ये ललिता ने बहुत उत्कृष्टम नियन का मतलब बहुत सुंदर कला से गाया। सनातन गोस्वामी पाद ने वही सब बातें लिखी है। एक बात लिखी है मुकंद की परिभाषा, देखो यहां लिखी है, वो उन्होंने स्वर से सुर मिलाया क्योंकि मुकंद कौन है, आह्लाद देने वाला, अति आह्लाद देने वाले मुकंद के साथ स्वर से स्वर मिलाया, उसकी सह गायिका बनी विशाखा, और उसके गान से पूरे विश्व को आनंद मिला और कृष्ण ने उसकी पूजा की। भले कृष्ण के सहायक गाया था, उसकी सहायक थी, असिस्टेंट थी, परंतु कृष्ण ने उसको बड़ा सम्मान देके पूजा किया, क्योंकि उन्होंने एक विशेष राग आलापा और स्वतंत्र आलापा। भले कृष्ण के साथ में गाया, राग से राग मिलाया, परंतु उसके राग की तान इतनी अद्भुत थी कि बिल्कुल उससे विलक्षण अलग खड़ी हो गई, अमिश्रित खड़ी हो गई। और फिर तो यही बातें लिखी है कि राग 7 प्रकार के हैं, जातियां 18 प्रकार की है, इसी का वर्णन लिखा है। तो यहां हमारे दोनों ये श्लोकों का भावार्थ पूरा होता है। अब 10वें श्लोक में कल आप रसास्वादन कीजिया। काच दरास परिश्रांताए गोपी रास में परिश्रांत हो गई, थक गई, ये राजा रानी का वर्णन आएगा। तो धन्यवाद आपका। कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए, जो कृष्ण की कृपा से, कृष्ण बलराम के आशीर्वाद से, प्रभुपाद के और आचार्यों की कृपा से जो उन्होंने लिखा था उसको हमने आपके सामने परोसा। तो आज गोपियों के गान की महिमा और विशेष दो गोपियों के, पहले सब गोपियों के गान की महिमा और नृत्य के साथ, और फिर कृष्ण के साथ सहायक दो गोपियों ने अपने मधुर ताल को आलापा, जिससे कृष्ण बहुत प्रसन्न होके उनका आदर किया और उनको उपहार दिया। ये परस्पर भक्त और भगवान के बीच में जो रसास्वादन है उसका वर्णन हम कर रहे हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो बोलिए। हरे कृष्ण।
हरे
कृष्ण।
प्रभु जी, ये हम कैसे समझेंगे कि कृष्ण अभी प्रसन्न हो गए हमारी सेवा से?
बहुत आसान है, गुरु प्रसाद का यश प्रसाद प्रसादा भगवत प्रसाद हो, गुरु प्रसन्न हो गया तो कृष्ण प्रसन्न हो गया, बेहद सिंपल सा फार्मूला है। और हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए ही काम करना चाहिए। कृष्ण प्रसन्न होने के लिए प्रमाण है गुरु का प्रसन्न होना, और गुरु के प्रसन्न होने का प्रमाण है वैष्णव प्रसन्न। वैसे प्रभुपाद से एक भक्त ने पूछा था कि गुरु जी मैं आपका कैसे, आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। प्रभुपाद थोड़ी देर शांत रहे और फिर कहा जब कृष्ण का प्रेम आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो ये एक प्रभुपाद ने उत्तर दिया, जब हमारा साधन भक्ति से भाव भक्ति प्रकट हो जाए तो कृष्ण प्रकट हो जाए, तो असल में गुरु प्रसन्न हो जाएगा, और गुरु प्रसन्न हो गया तो कृष्ण प्रसन्न हो जाए, क्योंकि कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया तो हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। तो असल में हमारे सारे साधन से कृष्ण प्रेम को प्रकट करना चाहिए, यही गुरु की प्रसन्नता है, और गुरु की प्रसन्नता ही कृष्ण की प्रसन्नता है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सार्वभौम प्रभु, वंडरफुल क्लास के लिए, इतने ब्लेसिंग के लिए, बड़े नेक्टर के लिए। तो और कोई प्रश्न है, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, किसी को कोई भी प्रश्न हो।
प्रभु जी, 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में,
भगवत गीता का
11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहला शब्द है मत कर्म कृत
मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वे भूतेषु यह समामेति पांडव। हाँ जी,
मैं, मेरी जिज्ञासा मत कर्म कृत तक है, engaged in my doing my work, ये भगवान का कर्म करना क्या है, कृपया प्रकाशित कीजिए।
हमारे पास तीन चीजें हैं, शरीर है, मन है और दिल है। शरीर से काम कृष्ण के लिए करो, मन से कृष्ण को पाने का संकल्प करो, और हृदय से कृष्ण से प्रेम करो। तो प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, कृष्ण के लिए काम करने का अर्थ ये है कि अगर आपके पास जमीन है तो उसके अंदर तुलसी को उगाओ और भगवान को अर्पण करो, अगर फूल उगाते हो या सब्जी उगाते हो तो भगवान को भोग लगाओ उसका, अगर आपके पास धन है तो कृष्ण का मंदिर बनाओ, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मंदिर के अंदर झाड़ू निकाल लो तो भी कृष्ण कर्म हो गया। तो कृष्ण कर्म करना शरीर से, ये भक्ति की, इसको कहते हैं भक्ति का सूत्र। ये जो 11 का 55 श्लोक है ये भक्ति का सूत्र है, इसमें तीन काम करने हैं और दो नहीं करने हैं। तीन करने हैं, कृष्ण के लिए शरीर से काम करना है, मन से कृष्ण को ही जीवन का लक्ष्य बना के उसको प्राप्त करने का प्रयास करना है, और हृदय से कृष्ण से प्रेम करना है, और एक संसारी लोगों के संग से बचना है, परंतु किसी से कोई द्वेष नहीं करना। तो दो निषेध है और दो करना है, और तीन करने हैं, दो नहीं करने, ये भक्ति का सूत्र है। तो कृष्ण कर्म जो है शरीर से होता है वो है कृष्ण की सेवा के कार्य, वो प्रभुपाद जी का तात्पर्य, बहुत बड़ा तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। राम अवतार जी उस श्लोक में प्रभुपाद ने
पढ़ा, मैंने पूरा पढ़ा है और कई बार पढ़ा हूं, लेकिन ये कृष्ण कर्म केवल इसी तक सीमित है जैसा कि परपट में लिखा है, या इसके अलावा अपनी सदगति के लिए कृष्ण कर्म की और कोई मीमांसा है?
इतना ही, क्योंकि आगे 12वें अध्याय में कृष्ण कर्म को तीसरे नंबर पे रखा गया है, पहले नंबर पे है मन से कृष्ण का स्मरण करना, उसको स्मरण आत्मिक भक्ति कहते हैं, वो है सबसे ऊपर का स्तर। उसके नीचे है मनन आत्मिक भक्ति, जो बुद्धि से होती है, शास्त्रों को पढ़ के भक्ति करना। तीसरी है साधन रूपा भक्ति, जो हरे, जो नाम जपना, कथा सुनना, कीर्तन करना, ये साधन रूपा भक्ति है। ये तीनों अंतरंग भक्ति है, अंतःकरण से होती है। जो ये तीनों नहीं कर सकता है किसी कारण से, तो वो कृष्ण कर्म करे। तो चौथे,
तो ये तीनों अंतःकरण कर्म करने को इच्छुक हूं।
नहीं, ये है ऊपर के, और कृष्ण कर्म है चौथे नंबर का। जो ये नहीं कर सकता है वो कृष्ण कर्म करे। ये वहां भक्ति के स्तर जो बताए हैं उसमें ऐसे लिखा हुआ है, श्रेय हो ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशेष ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांतिर अनंतरम। ये जो 12वां श्लोक है बहुत ही रहस्यमय श्लोक है, इसके भाव को समझने के लिए अलग ही विचार करना पड़ेगा कभी। बाकी आपका कृष्ण कर्म शरीर से होता है और कृष्ण का चिंतन मन से होता है और कृष्ण का जो मनन वो शास्त्र के पढ़ने से बुद्धि से होता है, और कृष्ण का एक कर्म है जो भक्ति के अंग है वो उत्तम है, वो भक्ति का साधन जो है वो उत्तम है, जैसे नाम जपना कीर्तन करना श्रवण कीर्तन करना बस सुमरण करना भगवान की पूजा करना, ये भी कृष्ण कर्म है लेकिन ये ऊपर के स्तर के, उन कर्मों से ये ऊपर के स्तर के है, जो आप भक्ति कर रहे हैं ये कृष्ण कर्म से ये एक ऊपर है, दास्य भाव का है ये अर्पण भगवान को करेंगे भक्ति के कर्म है, सामान्य कर्म नहीं है।
अरे कृष्ण राम तो मानसी सेवा को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता हूं,
उसके लिए शुद्धता की बहुत ज्यादा जरूरत है और अभ्यास की बहुत ज्यादा जरूरत है।
मैं कोशिश करता हूँ, अपने हर कर्म को भगवान को अर्पण करता हूँ, हर पल भगवान को स्मरण करने की कोशिश करता हूँ, और सर्वस्व भगवान का है इसको दृढ़ता से स्वीकार करता हूँ।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ईशा वाशा इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ उसी को अर्पण करना चाहिए। ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, इसका सहयोगी है वही भगवान को पा सकता है। हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा, ब्रह्म जी तनु ब्रह्म जी
धन्यवाद प्रणाम बोलिए।
हरे कृष्णा, मैं सिंधु बोल रहा हूँ जी।
हरे कृष्णा, सिंधु गोपाल दास बोलिए।
उसने अनजाने में भगवान का नाम लिया था, वो जानता नहीं था भी मैं नारायण भगवान का नाम है।
हाँ जी,
तो उसको नाम को निरपराध बोला गया, अभी उसको कोई अपराध नहीं है, निरपराध सही उसको माना गया है।
हाँ बोलिए।
तो अगर ऐसे निरपराध माना गया है उस नाम को, तो ऐसे बहुत से नाम हम लोग रखते हैं ताकि भगवान का नाम आ जाए तो हमारे लिए वो बेनिफिट हो जाता है, हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं। तो जब कई बार हम किसी ऐसे व्यक्ति का जिसका नाम कृष्ण है, गोपाल है, गोविंद है, तो उस व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है किसी का, तो वो हालांकि उसको पता है भगवान को मैं गाली नहीं दे रहा, भगवान के साथ झगड़ा नहीं हो रहा मेरा, पर उस व्यक्ति को बोल के वो उसके साथ अपराध करता है, उसके साथ गाली गलौज करता है, तो क्या वो उसको भगवान का अपराध हो जाएगा वो उस व्यक्ति के लिए? जैसे वहां पे अनजाने में वो नाम ले रहा है व्यक्ति, ये सोच रहा है कि भगवान का नाम नहीं ले रहा परंतु उसको फल मिल रहा है भगवान का, तो वहां भी उसको उस अपराध का ही माना जाएगा। हरे कृष्ण, मेरे कहने का मतलब सुनिए
आप। हाँ, दुबई वाला है सब। हरे कृष्ण, ए विनोद, मैं माना नहीं। अच्छा हरे कृष्ण, हाँ आपका प्रश्न जो है, ए भाई जरा दुबई वाले को देखो, ये आओ दुबई वाला नहीं देते तो कृष्ण भाई, ये दुबई वाला एक आया है इसको देखो भाई। हरे कृष्णा, इनका स्वागत करो, ये पुराने आपके साथी हैं। हरे कृष्णा, ये दामोदर देश के भक्त यहाँ वृंदावन में आए हैं, देखो। हरि बोल।
हरे कृष्णा भगवान प्रभु, हरे कृष्णा।
आए थे। हरे कृष्णा बेटा, सो आपके प्रश्न का उत्तर है, आप अब कोई खटिया पे कहीं ना कहीं बैठ जाइए, आसन लगाइए। कुर्सियां भी हैं, यहाँ निकालना चाहते हैं। सो आपके प्रश्न में कहना ये कि तीन प्रकार का नाम होता है, एक नाम अपराध के साथ होता है, एक नाम अभास होता है, एक शुद्ध नाम होता है। अजामिल ने नाम अभास, मतलब नाम की महिमा का पता नहीं था और नारायण का उच्चारण किया और अंत समय में किया तो उसको यम के फंदे से बच के एक और चांस मिल गया भगवान की भक्ति करने का, भगवत प्रेम नहीं प्राप्त हुआ। और निरअपराध इसलिए जपा के वो नारायण नारायण सदा जपता आ रहा था बेटे के नाम बुलाते बुलाते, लेकिन उसने नाम के बल के ऊपर कोई अपराध नहीं किया, परंतु शुद्ध नाम नहीं था। अब आपका प्रश्न है कि किसी का नाम गोविंद गोपाल है और उससे हम अगर झगड़ा करते हैं, उसको गाली गलौज करते हैं, तो क्या इससे भी नाम आभास के रूप में हमारे को कोई पाप लगेगा का? असल में भगवान के नाम के बल से उधार होता है। और किसी का नाम गोपाल हो, उसको आप पहले तो गोपाल कहते नहीं है, प्रायः तू तू कहते हैं, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर गोपाल कह के कुछ बुरा कहेंगे तो भी भगवान बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि जब कोई हम गलती करते हैं तो भगवान आंखें बंद कर देते हैं। जब पूतना आई थी तो भगवान ने आंखें बंद कर दी थी, लेकिन जब अच्छा काम करते हैं तो भगवान आंखें खोल देते हैं कि मेरे लिए काम कर रहा है। तो अच्छाई को भगवान स्वीकार करते हैं, बुराई को दरगुजर कर देते हैं। इसलिए उसकी चिंता मत करो, किसी का नाम गोविंद है और आपका पैसा खा गया है तो अच्छी तरह से झगड़ा करके पैसा ले लो और वो पैसा भगवान की सेवा में लगा दो। वो पैसा भगवान की सेवा में लगा दो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। भगवान का एक नाम है निमिष अमनिमिष, आंखें बंद करते हैं आंखें खोलते हैं, आंखें बंद करते हैं जब कोई अपराध करता है तो क्षमा करने के लिए, खोलते हैं जब कोई सेवा करते हैं तो कभी भूले नहीं, अपराध याद नहीं करते हैं और की भी सेवा कभी भगवान भूलते नहीं है। ये भगवान का सौशल्य चरित्र है, सुशील चरित्र है। और एक
तो अजामिल को शुद्ध प्रेम नहीं, शुद्ध भक्ति नहीं मिली, मतलब
नहीं। अजामिल उसके बाद बच गया, फिर हरिद्वार गया, फिर नाम जपा और ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ तक जाएगा। तो उसके और अजामिल के इस स्तर के आने के ऊपर भी घर में सालंग राम की सेवा करता था नारायण शिला की, और पूर्व जन्म में हिमालय में बड़ी तपस्या की थी, एक शराब के कारण ही उसकी ये स्थिति हुई थी, वही कोई सामान्य नहीं था। परंतु ये उदाहरण दिया जा रहा है कि जाने अनजाने में भगवान के नाम जपने से भी लाभ होता है।
थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद।
10:30 बजे जाऊंगा,
11:30 बजे
क्यों
वो आप जा रहे हैं?
हाँ
अच्छा, वो लोग नहीं
रहे, कौन जा रहे हैं? नहीं, मैं दूसरी गाड़ी
आप प्रबोधन महाराज
हमें पहुंच रहा हूँ।
अच्छा,
उधर मिलेंगे
तो। अच्छा, आप वहीं पे जा रहे हैं? अच्छा, ठीक ठीक।
हरे कृष्णा, किसी का और कोई प्रश्न है?
हरे कृष्णा,
हरे, थैंक यू,
हरे कृष्णा,
धन्यवाद,
थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल क्लास। मेरा एक प्रश्न है एक्चुअली, हम जैसे चार नियम पालन करते हैं,
हाँ जी,
चार नियम में एक है गैम्बलिंग,
हाँ जी,
चार नियम में गैम्बलिंग है। तो मैं काम पे हूँ तो यहाँ पे हम लोग ये टिकट बेचते हैं, $1,000,000 लगेगा, आप 1,000 दिरहम की टिकट खर्च करोगे तो ठीक है। तो मेरे साथ जो कलीग है वो बोलते हैं तू कभी पार्ट क्यों नहीं लेता ये? तो मैं बोला नहीं ले सकता, हमारे में मनाही है, ये भी एक गैम्बलिंग है। बोलता है जो लगे वो तू भगवान की सेवा में लगा दे। तो मैं बोला नहीं, फिर भी नहीं लगा सकते, क्या वो सही है वो बोल रहे हैं?
आप ईमानदार हो के जो मिल जाएगा भगवान की सेवा में लगाओगे,
वही पैसा आने के बाद लालच आ जाए तो क्या?
हाँ, तो इसलिए मत करना। और नहीं तो श्रीरंग मंदिर, श्रीरंगम मंदिर जो बनाया था एक बड़े डाकू ने, लोगों से लोग लूट चोरी के पैसे से बनाया था, लेकिन वो बहुत बड़ा पूजने हो गया, उसकी वहां समाधि बनी हुई है। अगर आपका मन नहीं बदलेगा, जो कुछ मिलेगा भगवान को दे दोगे और क्या क्या गारंटी है मिलेगा? मिलेगा और सब भगवान को दे दोगे, वो मायापुर के मंदिर चंद्रोदय में दे दोगे, कृष्ण बलराम के मंदिर को, तो फिर वो शुद्ध हो जाएगा। बात ये है कि अगर आपके पास जुआ का पैसा आया तो कहते हैं जुआ में जो जीते वो जाए जम लोक में, ओ जो हारे वो पाए हरि को। जुआ में जो जीते जाए जम लोक और हारे जाए हरि के पास, तो हारे वाला ही जुआ में भगवान का, पांडवों ने हारा तो पांडव हरि के पास चले गए और कौरवों ने जीता तो जमलोक चले गए, मरना पड़ा। तो इस झमेले में पड़ना ही नहीं चाहिए, परंतु आपको पक्का है कि मैं जीतूंगा और भगवान की सेवा में लगाऊंगा, तो गंदे नाले कितने ही गंगा में पड़ते हैं तो पवित्र गंगा हो जाती है, गंगा उससे अपवित्र नहीं होती है। ऐसा आपके जो है गैम्बलिंग का पैसा भी अगर भगवान की सेवा में लगा गया तो अपवित्र नहीं होगा, वो तो ठीक हो जाएगा क्योंकि लक्ष्मी उसी की है, परंतु आपने थोड़ा भी पा लिया तो फिर आप उसको हजम नहीं कर पाएंगे।
मैं उनको बोलता हूँ मैं इसीलिए नहीं खेल रहा हूँ क्योंकि लालच आ गई तो
अच्छा अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, नहीं करना, पक्के नहीं हो, कच्चे हो, इसलिए मत करना।
फोर्स करते हैं 100 ग्राम लगा ले क्या
एक,
है
एक वैश्य एक वैश्य एक वैश्य सोने का हार लेके भगवान को अर्पण करने के लिए आई। पुजारी ने कहा जाओ जाओ वैश्य आओ, भगवान ने पीछे से थप्पड़ मारी, बोला तेरे को दे रही है मेरे को दे रही है, बोला आपको दे, बोला मेरे को पहना लो ले लो उससे, मेरे को देगी तो पवित्र हो जाएगी, तुम लेगा तो नरक में जाएगा। तो इसलिए आप अभी तक उसको लेने के अधिकारी नहीं हो, इसलिए नहीं करो तो अच्छा है। ठीक है
बाबूजी, मैं एक्चुअली उनको समझा के थक गया हूं, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ते हैं। मैं बोला मुझे नहीं लेना, आप किसी और को ढूंढ लो।
आपको आप बोलिए कि मेरे पास है ही नहीं, खत्म करो। बोला मेरा जो है भगवान का है, भगवान मेरे को सैंक्शन करते नहीं है, मैं क्या करूं।
जी जी थैंक यू वेरी मच।
हरे कृष्णा।
उनको ये जवाब दे दूंगा अभी मैं, थैंक यू।
हाँ हाँ। बोला पहले आप में से जिसने जीता है एक बार भगवान को दे के देखो तो फिर मैं भी लगाता हूँ।
हाँ ये सही है, ये सही है, थैंक यू थैंक यू।
हाँ हाँ। हरे कृष्णा। और समाचार?
हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का? अगर नहीं है तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कृष्ण प्रिया माता जी का, उनको अनाउंसमेंट करना है।
हरे कृष्णा।
हाँ जी। ओके शिला प्रभुपाद की जय।